اس سے آتما تب بھی نشٹ ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے مت ڈلو. جب ہے تبھی دکھ, نہیں ہے تبھی دکھ, مل گیا تبھی دکھ. ارے بھائی ابھی ان سے کون تھا نہیں ہوگا, ہمارے پردھان منتری جو تھیں ان کے دو دو بیٹے لاکھوں کوٹی ارب ڈالر سب بھرے ہیں سوئس بینکوں میں, کیا کام آیا, بچا سکا؟ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ بیئنت سنگھ کوئی ایک تھے منتری نا, ان کو انہی لوگوں نے مارا ہوگا جو ان کے نکٹ میں رہتے تھے, دوسرا اس میں نہیں ہو سکتا. ابھی سنتے ہیں کہ کوئی اب پکڑے تکڑے, دیکھیں گے نکلے گا یہی جو رکشک وہی بھکشک. اس لیے بھگوان سے کوئی کامنا نہ, وہ سمجھنے والے ہیں, خوب سمجھنے والے, جو کیا چاہیے اس کے لیے کلیانکاری ہے اس پر چھوڑو, اسی کا نام شرناگتی. اس لیے بھکتی کا پہلا اسٹیپ ہے شرناگتی. بھگوان اتنے وشو کو چلا رہے ہیں, لاکھوں کوٹی ارب خرب لوگوں کو, جیووں کو, کیول منسی ہی جیو نہیں ہے, ہاتھی گھوڑے چیٹی چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلس جو ہوا میں اڑتے ہیں وہ بھی جیو ہیں. وہ ایسے جیو یعنی منشی ہو جائے تو ایسے جیسے پرتھوی لاکھ پرتھوی بھر جائے. ہمارے ایک بند خون میں جتنے جیو ہیں جیواڑو, وہ یعنی منشی بن جائیں تو ایسے ایسے کروڑ وشو بھر جائے, اتنے کو سنچالن کرنے والے ہیں. اس لیے کیا ہمارے لیے اچھا ہے برا ہے, تب تک ہستکشیپ نہیں کریں گے جب تک شرناگت نہیں ہے. جب شرناگت ان کے ہو جائیں گے تو کہیں جیسے بیش مانگ رہا ہے, بیش کیوں میں اسے امرت پلاؤں. اور دیوتا لوگ اس پر وچار نہیں کرتے, کرشن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں اس لیے مانیں گے نہیں, یہ بھی غلط, یہ سنسار کیسے چل رہا ہے, ہو گیا ہے گھنٹہ. اس لیے خوب اچھی طرح سے وچار کر کے آپ دیکھو, جیسے آپ مرنے سے کوئی بچانے والا وشو میں ہے, وشو کے سمست جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹرس ہیں بلاؤ اور کہا جائے میں مرنے والا ہوں ہم کو بچا دو, بچا دیں اپنے بیٹے کو اپنی میا کو اپنی باپ کو, کیوں نہیں بچا سکے, کوئی بچانے والا نہیں. ہم اسہائے ہیں اس سمے بھی اسہائے ہیں, کیوں نہیں اس پربھو کے شرن میں ہم چلے جائیں, دیکھو تو کتنا سکھ آنند ہے. اس لیے اس پر سب کچھ چھوڑو اور چھوڑ کر کے اپنا کرم کرو, جب جو کرنا ہے کسی انوبھوی ویکتی کو اپنا مارگ درشک رکھو, ہمارا مارگ وہ چلائے, انوبھوی ایسے نہیں, جو اپنا نہیں چلا سکتا ہے وہ دوسرے کیا کیا چلائے گا, اپنے بل بلا رہا ہے. اس لیے ایسے انوبھوی انوبھو کرنے والے بھگوان کو, اور سنسار سے پرم برکت بھگوان میں ان کا پریم ہو, ایسے ویکتی کو مارگ درشک کرو, گرو مت کہو, نہیں تو گرو کہنے سے آج کل گڑبڑ ہو جاتا ہے, گرو شبد کا اچار نہ کرو, مارگ درشک کہو. اس لیے مارگ درشک رہنے دو, کیا کرے سمے کے انوسار. گرو تتو تو بہت سندر ہے, آج کل سنتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں, سمپردائے سن کر کے لوگ سب بھڑک اٹھتے ہیں, کیوں ادھک تر ویسے ہی لوگ سمپردائے میں نے سمیک روپ سے پردان کرتی ہے جو دھارا, جو ہم کو اچھے راستے سے لے جا کر کے بھگوان تک پہنچا دیتی ہے, اس کو سمپردائے. آج سمپردائے میں جو ہیں وہ بھی بگاڑ رہے ہیں, جو باہر میں ہے وہی بگاڑ رہے ہیں, دنگے فساد مچانے والے. اس طرح سے بھگوان کے پرتی شرناگت ہو کر کے بھگوان سے پرارتھنا کریں یا ہمارے لیے کوئی شدھ مارگ درشک مل جائے, جو ہم اس جیون میں اس جگن میں رہتے ہوئے بھی سکھ اور شانتی ہم پراپت کر سکیں, اور انت میں ہماری درگتی نہ ہو, کیونکہ جانا تو ہے کہاں جائیں گے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کوئی بتلا سکتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم لوگ کچھ کچھ انمان کر سکتے ہیں شاستروں کے آدھار پر, اس کے کرموں کے آدھار پر ہم لوگ کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں, سادھارن آدمی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا. ہم یہ بھی دیکھ کر کے ہم لوگ کچھ بتلا سکتے ہیں, یہ پہلے کا جیون اس کا کیسا تھا, اس سمے کیسا ہے, تو اس سمے ایسا ہے تو ایسا ہوگا. جس کو ناک سے پانی آ رہا ہے, سیر میں بھار ہے, کبھی چھینکیں آ رہی ہیں, تو اس کو کون سی دوا دینے سے ٹھیک رہے گا, یہ سادھارن ڈاکٹر نہیں جانتا. ایک آدمی آیا کہا جی میری طبیعت بہت خراب ہے. آپ لوگ بیشی رائے کا نام سنا ہوگا, بنگال کے پہلے فرسٹ منسٹر تھے, بہت دنوں تک وہ وہاں پر منتری تھے. تو کوئی روگی آیا ان کے پاس, اس کے ساتھ اٹینڈنٹس بھی آئے, अटेंडेंट जो था वो कह रहा है कि इनको यह बीमारी है, तो वो बिगड़ गए। तो हमारे पास किस लिए आज, जब तुम ही को बोलना है तो तुम ही इलाज कर लो। अरे तुम पहले मरेगा वो पीछे मरेगा, और देखते देखते थोड़ी देर के बाद में देखा जैसे वो खत्म हो गया अटेंडेंट। बीमारी वो उसको नहीं है, उससे बीमारी तुम्हारी भयंकर तुम्हारी है, मैं देख रहा हूँ, अब तुमको बचाया नहीं जा सकता। अब देखते देखते बस वो फिट हो गया, मर गया। तो रोगी डॉक्टर कैसा होना चाहिए? रोगी यदि कह दे जी हमको ये बीमारी है, अरे उसका शरीर, उसका भाव, उसके सिम्टम्स जो है ये बतला देते हैं। एक बच्चे के यहाँ गया, देखा ये दुबला पतला आदमी है, कहा जो तुमको भूख नहीं लगती, पेट की हजम शक्ति गड़बड़ है, अपने आप कहने लगा, कहा यार ये तो अच्छा डॉक्टर। ऐसे ही ये शास्त्रों में नुक्से सब दिए गए हैं, सिम्टम्स दिए गए हैं, जो शास्त्र को जानते हैं इसके अनुसार में ये सब निर्णय कर लेते हैं। इसलिए हम लोग इस जन्म में भक्ति के लिए चेष्टा करेंगे, अनकंडीशनली उनके चरणों में सरेंडर करेंगे, क्योंकि हम में तो कुछ ऐसी शक्ति नहीं है, ये जीवन सुखमय नहीं है, यह ध्रुव सत्य है। एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा, एक दिन मरना पड़ेगा, और ये सारी संपत्ति भी छोड़ करके जाना होगा, एक सुई का धागा भी नहीं लेकर के जाना। इसलिए प्रभु के सरेंडर करके हम जिस रूप में है वैसी रूप में स्थाने सीता तनवांग तन मन वचन से प्रभु को स्मरण करते हुए जिस रूप में रखें, सबसे पहले वैसे एक्सपर्ट के चरणों में, एक्सपर्ट माने गुरु, उनके चरणों में हम अनकंडीशनली सरेंडर करेंगे। जानबूझ करके जैसे तैसे को गुरु मत करना, उनका मार्गदर्शन से वो भी जाएंगे वो भी जाएंगे। जैसे हिरण्यकश्यप गया और उनके गुरु संडामर्क भी गए, ऐसा नहीं। जो तत्व को जानने वाले भजन परायण है, ऐसे तत्वज्ञानी हैं, सचमुच में उनको रुपए पैसे का लोभ नहीं है, हमारा कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे। आज यहीं तक रहे, मैं सोच रहा था जैसे मैं क्या विषय बोलूं, तो इधर का इधर मिला करके एक कुछ मैंने कहा। अभी आंख पर वो चश्मा भी नहीं है, नहीं तो शास्त्रों से कुछ पढ़ करके भी बतलाता, किंतु मैं समझता हूँ कि उपयुक्त विषय है। इसलिए आप लोग भगवान पर विश्वास करना सीखें और भविष्य जीवन को सुखी और शांतमय बनाने की चेष्टा, और वो भी कलयुग केवल नाम आधारा, नाम के आधार। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी यही कहा, वो नम क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। लगाइए एक ध्वनि लगाइए तो। भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुभवराय आज परम पवित्र तिथि है। आज ही के दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस जगत में प्रकट हुए थे। ये भक्ति विनोद ठाकुर रूप सनातन इत्यादि जो छह गोस्वामी थे उनके बाद में ये सप्तम गोस्वामी कहलाते हैं। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीलजीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये छह गोस्वामी थे जिन्होंने कृष्ण के बाद में जो उजड़ गई थी मथुरापुरी और वृंदावन, वृंदावन के में कोई भी चिन्ह नहीं था राधा कृष्ण के लीलाओं का, जो अभी हम लोग चिन्ह देख रहे हैं 84 क्रोश ब्रजमंडल के अंतर्गत में वनों का अभी विभाग देख रहे हैं, वहाँ पर वृंदावन में सेवा कुंज देख रहे हैं, गोविंद जी का मंदिर देख रहे हैं, निधवन देख रहे हैं, ये सब गोवर्धन में हरदेव जी का मंदिर है,
मानसी गंगा, राधा कुंड में राधा कुंड, श्याम कुंड ये देख रहे हैं, काम्य वन में जो विमल कुंड इत्यादि है, ये काम्य वन है, ये वृंदावन है, ये मधुबन है, ये ताल वन है। कृष्ण ने उन सब लीलाओं को यहाँ पर ये किया। यदि ये छह गोस्वामी नहीं आते तो सब लुप्त हो गया था। कृष्ण के जाने के बाद में गंभीर जंगल हो गया था, कोई ये जानने वाला नहीं था, बतलाने वाला, जो वृंदावन में कहाँ पर कृष्ण की रास हुई थी, कहाँ पर राधा कुंड है, श्याम कुंड है, खेतों के में बदल गया था। अभी भी वृंदावन में ऐसे कुंड हैं जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, कृष्ण की लीला स्थलियों का, वहाँ कोई चिन्ह ही नहीं है। तो ये सब इन लोगों को उन्होंने प्रकाश किया। वृंदावन में आदि मंदिर हैं श्री गोविंद जी का, गोपीनाथ जी का, मदन मोहन का, ये कृष्ण के बाद ही में बज्रनाभ ने, उनके प्रपौत्र ने स्थापित किया कृष्ण की लीला के स्थली के रूप में। ये लुप्त हो गए थे, इनको इन्होंने ही प्रकाशित किया। जितने भक्ति राज्य के पारिभाषिक ग्रंथ हैं, पारिभाषिक माने क्या, भक्ति किसको कहते हैं, भगवान कौन है, स्वयं भगवान कौन है, नारायण क्या है, राम क्या है, इनका क्या संबंध है, दुर्गा काली इत्यादि का इन लोगों से क्या संबंध है, परमार्थ क्या है, भोग क्या है, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, महाप्रभु जी के आदेश से इन्होंने बहुत प्रकार के ग्रंथ निर्माण जो आज भक्ति शास्त्र में परिभाषिक रूप में है, इसको अवलंबन करके ही भक्ति तत्व का विचार करके लोग ब्रज की भक्ति में प्रवेश करते हैं। इसके बाद में ही ये सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर हैं। इनका जन्म महाप्रभु जी के नदिया जहाँ जिला है बंगाल में, यहाँ पर प्रकट हुए थे मायापुर में, उसी के पास ही में एक बीर नाम नगर नाम का एक छोटा सा गांव है, बीर नगर। बहुत धनाढ्य और बंगाल का संपन्न परिवार के अंदर में ये पैदा हुए थे, किंतु अब वो लोग कुछ निर्धन हो रहे थे, इसलिए ये स्कूल इत्यादि तक पढ़े, वहां की पढ़ाई, इसके बाद बड़ी मुश्किल से ये कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने की। और जिस समय में कॉलेज में पढ़ते थे उस समय तो बंगाल में ये अंग्रेजी ही, वहां पर मजिस्ट्रेट, एसपी, बड़े बड़े जो अफसर होते थे सब वही लोग होते थे। तो उस कॉलेज में पढ़ते थे और वहां पर अंग्रेजी में भाषण दिया करते थे। एक तरह से वैष्णव धर्म उस समय तक लुप्त हो चुका था, देव देवियों की उपासना होती, यहां तक कि स्मशान भूमि में देवी की पूजा होती, मदिरा, मांस, सिंदूर, ये सब कपालिक जो कहलाते थे ये सब पूजा होती। धर्म के नाम में बहुत अपव्यय होता था, एक बिल्ली ले लिया, एक बिल्ला ले लिया, दोनों का विवाह में लाखों कोटि रुपया खर्च कर दिया, धर्म के लिए एक पैसा नहीं। कृष्ण भक्ति को लोग जानते नहीं थे, दुर्गा जी की भक्ति बंगाल में अभी भी है, जो अपने हाथों में तलवार लिए हुए असुरों को काट करके मंडमाला गले में दे रही है, बस इन्हीं की पूजा होती थी, मदिरा पान इत्यादि लोग करते थे। गीता भागवत का तात्पर्य सभी लोग भूल चुके थे। वैष्णव धर्म के नाम में, नाम पर केवल यही था, जो बंगाल में तो बहुत से लोग निर्धन भी हैं अभी भी है, वो स्त्रियां जिनका परिवारिश नहीं हो पाता था वो वृंदावन में चली आती, नवदीप में चली आती, भजन आश्रम में रहती, व्यभिचार का अड्डा बन जाता और कोई बाबा जी उनको अपने पास में रख लेता, पारकीय भाव करता, यही भजन था। केवल धर्म के नाम पर चारों तरफ अधर्म फैल रहा था। महाप्रभु जी के धर्म को इसी प्रकार से लोगों ने बना रखा था, व्यभिचार का अड्डा है। पारकीय भाव माने क्या, कितना शुद्ध पवित्र है गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव। उन लोगों ने इसका अर्थ निकाल लिया, जी विवाह करने की जरूरत नहीं है, दूसरों की स्त्रियों से प्रेम करना ही यही पारकीय भाव है, दूसरे अपने पति को छोड़कर के दूसरों से प्यार करना यही पारकीय भाव है। इसलिए सभ्य समाज जो पढ़ा लिखा था भक्ति के नाम से चिढ़ता था, गुरु के नाम से चिढ़ता था, वैष्णव के नाम से चिढ़ता था, ये तो व्यभिचार करता है सीधा सा। भक्ति विनोद ठाकुर पहले पुरुष हैं जो शुद्ध रूप में इसको चलाया भक्ति को। पहले तो ब्रह्मचारी हो, बाबा जी की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, माता पिता का आदर करना सीखे घर में ब्रह्मचर्य बन करके, ब्रह्मचारी बन करके, और सब समय भगवान चिंतन करें आदर्श रूप में रह करके। महाप्रभु जी किस लिए आए थे, पुनः अच्छी ढांचा में सुशिक्षित लोगों के द्वारा प्रचार आरंभ करना। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को जिसका नाम था विमलानंद, संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान, अंग्रेजी भाषा के अद्वितीय विद्वान, संस्कृत भाषा के अद्वितीय विद्वान, समस्त विद्या में पारंगत, वेदांत शास्त्र श्रीमद् भागवत उपनिषद इन सब में परम प्रवीण थे, ऐसे ये भक्ति विनोद ठाकुर, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सर से। इनको इनका जन्म हुआ जगन्नाथपुरी में, उस समय में ये घर से सत्तू बांधकर पैदल चले जगन्नाथपुरी, वहां एक स्कूल में हेडमास्टर बने भक्ति विनोद ठाकुर, और वहां पर जाकर के थोड़े दिनों में ही योग्य तो थे, इनकी योग्यता दे करके ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए। आरंभ किया यहां से, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, और इन पर सारे जितने अंग्रेज थे और दूसरे लोग थे, इनकी ईमानदारी विद्वता और धर्म का विचार देकर के जगन्नाथ टेम्पल का इनका रिसीवर बनाया। जगन्नाथ जी की जितनी व्यवस्था होती थी, पूजा पाठ, ये रथ चलता है, ठाकुर जी का मंदिर की व्यवस्था, सब इन पर छोड़ दिया गया। कोई जटिल समस्या आती तो इनके ऊपर में, और उस समय में जैव धर्म लिख रहे हैं, इधर कोर्ट करते, कोर्ट करने के बाद में सवेरे आते, शाम को 5 बजे 6 बजे आ जाते, इधर में जजमेंट देना है केसों का, लिख लेते, और 10 बजे कि 9 बजे खाद पी करके बस सो जाते, 12 बजे उठ जाते रात को, और माला हाथ में लेकर के शास्त्रों के जितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं उसकी आवृत्ति करते हुए उसका ट्रांसलेशन में गान करते, वही जो गान करते हैं वही शरणागति गौड़ीय गीति गुच्छ में जो हमने दिया है, ये सब जसमति नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन कान गोपी प्राण धन मदन मनोहर कालीय दमन विधान अमल हरि नाम अमिय विलासा। इसके बाद में विपिन पुरंदर नवीन नागर वर, नवीन नागर वर क्या नागर हैं, गोपियां सब नागरी हैं, इनके प्रियतम हैं नागर, और वृंदावन में विलास कर रहे हैं। फिर कदम्ब कानन रास पारायण, दूसरे कीर्तन में लिखा कदम्ब कानन रास पारायण वृंदा विपिन निवासी, इतना सुंदर कविता लिखते थे, पद्य लिखते थे, उन्हीं का अनुवाद श्लोकों का अनुवाद देकर के करते थे, भजन करते करते साथ साथ में उनका अनुवाद ट्रांसलेशन भी होता जाता। और क्या करते थे उस समय में, गोपी के भाव में डूब जाते। कभी उनकी पत्नी एक बार अपने घर से वहां गई तो वो छिप करके दूर से देख रही हैं, देख रहे हैं क्या जो घर में बैठे हैं पूरी बना रहे हैं 12-1 बजे रात को देख रहे हैं कि कृष्ण रास मंडली में थक गए हैं रास करते करते गोपियों के साथ में, अब गोपियों की दासी बनकर के पूरी बना रहे हैं। सचमुच में ऐसी भावना आई कि सचमुच में ये सब होने लग गया, अपने पदों में उन्होंने ऐसे सब चीजों को दिया है जो कैसे सेवा करनी है होती है, अपने कीर्तनों में भर देते थे। वही कीर्तन उनका ये गौड़िया गीति की गीति माला कल्याण कल्पतरु शरणागति इत्यादि थी जो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन है नरोत्तम ठाकुर से, और उसके पहले जो हम लोगों के जो सब कवि लोग हो गए हैं उनसे कम नहीं, कृष्णदास कविराज जी से भी कम नहीं, इतने उच्च कोटि के ये कवि थे, इतने सुंदर रसिक वैष्णव थे। अब वहां पर एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में जबकि ये रिसीवर थे जगन्नाथ मंदिर के टेम्पू के, सब कुछ करता धरता ये थे, इन्हीं के अधिकार से जो जैसा आदेश देता सब कुछ होता, मजिस्ट्रेट भी थे वहां का, जो मजिस्ट्रेट होता है वही रिसीवर भी होता है, अब आजकल क्या है नहीं जानता। तो एक समय में वहां पर ऐसा हुआ, पुरी में जगन्नाथ माने जहां उड़ीसा है बड़े गंभीर वन है, जंगल है बहुत भयानक, उसमें सिंह भालू हाथी गंडार सब रहते हैं। उसी वन में एक साधु रहता था, उसका नाम था विश्वक्सेन। वो कुछ उसको सिद्धि थी, यदि सिर ऐसे कर देता तो उसकी बड़ी बड़ी लंबी जटाएं थी, आग एकदम भभकने लगती, गिरने लगती, चिंगारियां आग के निकलती, लोग उसे जल जाए ऐसी उसकी जटाओं से निकलती, जिसको जो कह दे रहा वो होने लगता। वो उड़ीसा भर में उसकी बड़ी धाक जम गई थी, सब स्त्रियां उनके दर्शन करने के, स्त्रियों को थोड़ा सा भावुक होती हैं, थोड़ा सा कुछ मिल जाए ना और कुछ सिद्धि मिल जाए देखें एकदम सब झुक जाएंगे, पुरुष सब विचार करेंगे उसे देखेंगे, पुरुषों में भी कुछ ऐसे हैं विचार नहीं करते, बस देखा जैसे इसको थोड़ा सा सिद्धि है, कोई बेटा मांगने के लिए, कोई पति का हृदय बदलने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई धन के लिए, कोई लड़की की शादी के लिए, बस इसी को धर्म समझ करके वहां पर पहुंचने लगी, लोग उसका बहुत आदर करने लगे। स्थिति यहां तक आई ये उसने कहा कि मैं ही भगवान हूं, थोड़ी सी सिद्धि आ गई ना, मैं ही भगवान हूं, जीव कदापि भगवान नहीं हो सकता, भगवान ही भगवान है। आजकल कुछ लोग उनकी एक छाया शक्ति को दुर्गा को भगवान मान लेते हैं, कोई शंकर को भगवान मान लेते हैं, कोई गणेश को भगवान मान लेते हैं, कोई हनुमान को भगवान मान लेते हैं, राम और कृष्ण देखते रह गए, इनकी कुछ दाल नहीं गलती, कुछ नहीं चलती। असल में ये सब बातें गलत हैं, कृष्ण राम ये भगवान हैं, इनके अवतार भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान सन, कृष्ण स्वयं भगवान है, ये जो देवता देवी हैं इनकी दास दासियां, उनके इच्छा अनुसार में जगत को प्रवर्तन करने के लिए चलाने के लिए ये सब कार्य करता है। चौकीदार राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति नहीं है, दरोगा भी राष्ट्रपति नहीं है। एक गांव में दरोगा गया, दरोगा जानते हैं ना, पुलिस अफसर एक छोटे रंग का है, एक थानादार है वो, तो किसी जगह में गया तो लोग उसके प्रभाव से पड़े, सब लोग एकदम थर थर कांप रहे हैं उसके डर से, जिसको जो कहता है वही ऐसा करता है, लोगों की धाक पुष्प जम गई, जैसे ये सबसे श्रेष्ठ आदमी है। बाई चांस उसी जगह में वायसराय, इंडिया के वायसराय गए, आजकल वायसराय नहीं आजकल राष्ट्रपति हैं, वो वायसराय गए, तो गांव में दिन दुखियों का कुछ दर्द सुन रहे थे, तो एक बुढ़िया की बकरी कहीं गुम हो गई थी, वो भी उनके पास में गई और बोल जी हमारी बकरी चली गई है हजूर, इसकी व्यवस्था कर दिया जाए, कहे इसको 100 रुपया दिलवा दो और एक दूसरी बकरी खरीद करके इसको दे। बड़ी प्रसन्न हुई, कहते हे भगवान मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो आए हैं महापुरुष ये दारोगा हो जाए। उसके दाना जी ये दारोगा इनसे बहुत बड़ा है। ऐसे ही हमारी वर्तमान में स्थिति है, क्योंकि हम शास्त्र तो पढ़े नहीं, शुद्ध वैष्णव का संग करते नहीं, शास्त्रों का अनुसरण करते नहीं, गीता भागवत कभी देखा नहीं, इसलिए हमारी ऐसी धारणा हो जाती है। तो वो अपने को कहने लगे जब मैं ही भगवान हूं, क्यों चुटकी बजाता तो रुपया झटझट झटझट गिरने लगता है ना, कह देता जब मिठाई आ जाए तो मिठाई ऐसे कर देता और मिठाई एकदम आने लगता, नोटों के नोट उसके हाथ से गिरने लगते। अरे ये सब कुछ नहीं भगवान। उसने कहा जी देखो मैं अमुक तारीख को, एक तारीख दिया उस दिन रास करूंगा, इसलिए सभी जितनी स्त्रियां हैं सब वहां पर पहुंच जाए, जो इसमें बाधा देगा वो मर जाएगा। और उसने कहा इसके बाद में मैं ब्रिटिश सरकार को यहां से खदेड़ करके बाहर कर दूंगा भारतवर्ष से, और मैं यहां का सर्वे सर्वा बनूंगा, मैं भगवान हूं, मेरी चलेगी भारतवर्ष में, इसके बाद में दुनिया भर को मैं संचालन करूंगा। घर के लोगों ने वहां के जो गवर्नर है उनको ये चिट्ठी लिखी, ये हमारे घर की स्त्रियां हमारी बातें नहीं मान करके वहां पर पहुंच रही हैं, अमुक तारीख को वहां रास करेगा वो, और वो कहता कि मैं भगवान हूं, हमारी सारी वर्ण व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो गई, आप लोग रक्षा करें, आप लोगों की दुहाई है, आप गवर्नमेंट हैं। उन्होंने वो इनको भेज दिया, इसी के एरिया में पड़ता था भक्ति विनोद ठाकुर, आप इंक्वायरी करके इसकी उचित व्यवस्था करें, आपके ऊपर में भाग दिया जाता है। बस इन्होंने अपने हाथ में लिया और इंक्वायरी करने के लिए उस जंगल में गए, गभीर जंगल में, अपने साथ में कुछ पुलिस सिपाहियों को भी, दारोगा को भी और उसे भी बड़े अफसरों को, उन्होंने एसपी इत्यादि को साथ ले लिया, कुछ थोड़े से सिपाही कम से कम तो 20-25 की एक टोली चल पड़ी। तो जब जंगल में गए जा करके उसके आश्रम में गए, बड़े आदर से इनको कहा और तुमको गवर्नर साहब ने भेजा है ना, ठीक है ठीक आ जाओ, तुम्हारा नाम भक्ति विनोद ठाकुर है, तुम उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अपने आदमियों को कहा इन लोगों को खाने पीने की सारी व्यवस्था करो, तुम इंक्वायरी करने के लिए है मेरा आया है, तुम जानता नहीं जो मैं भगवान हूं, तू हमारा बहुत प्रिय है, हमारी मैं जानता हूं कि तुम इसमें बाधा नहीं देगा। उन्होंने कहा जैसे आपने जो कहा वो तो ठीक है, किंतु आप ऐसा गलत क्यों करते हैं जब मैं भगवान हूं, भगवान तो अपने को भगवान नहीं कहता, और भगवान तो ये विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, उसकी पलक से ये सृष्टि हो जाती है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र इत्यादि सभी उसके इशारे से सब चलते हैं, तो ये आप ये सब करते हैं, आप भगवान हैं, भगवान का जन्म और मरण नहीं होता, वो सर्वशक्तिमान होता है, आप सर्वशक्तिमान है, आप अपनी छाती पर हाथ देकर के कहिए, आप दूसरों को ठगिए मत, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से हटा देंगे, आप रास करेंगे, रास करने की आपकी योग्यता है, तो ये देखो तुम हमारी इस बात में दखल मत देना, नहीं तो तुम भी मरेगा। उन्होंने कहा आपको हम अभी पूरी ले चलेंगे जगन्नाथ से, और वहां पर आपका विचार होगा, आप सीधी तरह से वहां पर चलेंगे, देखो तुम हमको पकड़ेगा, अच्छा तो देखे थे तुम हमारा क्या करता, मैं सिपाहियों को आदेश दिया पकड़ लो, तो ज्यों ही जाए तहीं ऐसे जटाओं को ऐसा कर दे, आग एकदम गिरने लगे, उधर के मारे सब इंस्पेक्टर और एसपी सब जहां तहां सब भाग गए, भागे मैंने वहीं डर के मारे। उन्होंने कहा जी सबको बुलाया, सुनो हमारे साथ में चलो, जाकर के उनके जटा को पकड़ लिया, आप सीधी तरह से चलेंगे कि नहीं, आप पाखंडी आदमी हैं, जिस रास को राम ने नहीं किया, नृसिंह जी ने नहीं रास किया, द्वारका में कृष्ण ने नहीं किया, आप यहाँ पर उड़ीसा में राज करेंगे? आप तो व्यभिचारी व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, अपने को सुधारी अभी चांस देते हैं, नहीं तो अभी पूरी ले चलेंगे। अच्छा तो देखो कैसे ले चलता है, पकड़ कर कहा इनका जटा काटो तो पहले, कोई डर के मारे जाए नहीं, इन्होंने स्वयं लिया कैंची और उसको पकड़ करके और उसको सब काट। अभी तुम नहीं समझ रहा है, अभी तुमको चांस देते हैं, अब तुम दो एक दिन में मरने वाला है। अच्छा तो मैं मरूंगा तो देख लूंगा, सब समय हरिनाम कर रहे हैं, जानते हैं कि ये योगी है, योगी का कुछ पावर होता है, कुछ सिद्धि होती है। ले गए वहां पर पुरी में, उसको हवालत में बंद कर दिया और चार्ज शीट उसके विरुद्ध में उन्होंने जो अपना इंक्वायरी का चीज है उसको उन्होंने लिखा और लेकर के गवर्नर के पास में भेजा। इस पर विधिवत केस चलना चाहिए और यदि नहीं सुधरता है तो इसके लिए इसको दंड दिया जाए। उन्हें कहा जी विचार का सारा भार आपके ऊपर में है, आप जो कुछ विचार करेंगे हम उसको ग्रहण करेंगे। अब कोर्ट में उनको जाना है, उसी दिन उसकी पेशी है। कहिए देखो तुम हमको जिस दिन पेशी करेगा तुम कोर्ट में नहीं आएगा, उसी दिन तुम मरेगा। सचमुच में उस दिन जब जा रहे हैं कोर्ट में, पेट में बहुत जोर से सूल दर्द उठा। उनकी पत्नी कह रही है क्यों नाहक उससे लड़ रहे हो जोगियों से, क्या जरूरत है आपको, अपना जान क्यों गवाते हो? मैं कहे अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, व्यभिचारी लोगों के लिए धर्म में कोई स्थान नहीं है, इसलिए यदि ये कहता है कि मैं भगवान हूं तो कुछ दिन के बाद में और हजारों भगवान निकलेंगे और सब लोगों का चरित्र भ्रष्ट करेंगे और इन्हीं को लोग भगवान मानेंगे, इसलिए मैं इसको दंड देना चाहता हूं। इसके बाद में कुछ भी हुआ वो भगवान का नाम जपने लगे, धीरे 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 शांत। इतने में जब वो जा रहे हैं तब तो उनका जो बच्चा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके पेट में सूज उठा। कहा जो कोई बात नहीं, उसको जैसे ही छोड़ करके उसके सिर पर हाथ रख दिया और हरे कृष्ण कह करके नृसिंहदेव जी का कोई मंत्र कहा और चले गए। कोर्ट में वो आया, कहा जो तुम हमारी बात को मानते हो, अपना ये सब प्रोग्राम छोड़ो, राज करेगा और ब्रिटिश राज्य को इस दिन निकालेंगे हम, ये सब भाव छोड़ो और सीधे रूप में साधु बन करके भगवान का तू भजन कर, और नहीं करता है तो तुमको अभी जल देंगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, अभी तो थोड़ा सा किया है, अब इस बार तुमको अच्छा डोज देंगे, तुम्हारी मरने की नौबत आई। अच्छा तो मैं मरूंगा तो देख लूंगा। इसके बाद जब नहीं माना, 6 महीने का सत्सम कारावास दिया और इसमें यदि सुधर गया ठीक है और नहीं तो फिर इसको ये पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। सत्सम माने क्या, काम करते हुए, और तब इसको। इसके बाद में उसने खाना पीना छोड़ दिया, कुछ नहीं कर सका, भक्ति के सामने कोई भी मंत्र तंत्र जादू टोना कुछ नहीं चलता। हम लोगों पर कोई भी जादू टोना कोई भी मंत्र तंत्र कोई भी नहीं चल सकता, भगवान की भक्ति से बढ़कर के उनके मंत्र से कुछ बढ़ नहीं है, बढ़कर के नहीं। हम लोग कुछ भी नहीं जानते, योगी तो कुछ नहीं किया, किंतु महामंत्र कर करके और उसको या कोई मंत्र कह देंगे बस सब जादू टोना सब कुछ खत्म हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि वहां पर कुछ लोगों की काम नहीं करेगी। भक्ति बोनो ठाकुर ने अपने जीवन में आचरण करते हुए, इसलिए जहां तहां अपनी श्रद्धा को बेचो मत बेकार की। भगवान भगवान है, वैष्णव वैष्णव है, देवता देवता है, उनको भगवान मत मानो, ये भक्ति का सरासरी विरोधी है। इसलिए जिस जैसा है उसी को माँ का सम्मान दो, पिता को पिता का सम्मान दो, गुरु को गुरु का सम्मान दो, सब खिचड़ी एक है ऐसा मत मानो, ये भक्ति नहीं है। इस विषय को जानना चाहिए, कैसे पूर्व जन्म की सुकृति न हो, साधु संग नहीं होने से ये सब चीजें हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक पुस्तक लिखा जैव धर्म, बहुत सी पुस्तक लिखी है, एक दो नहीं सैकड़ों। कब ये करते थे, ये लिखते थे कब, कब जजमेंट लिखते हैं, कब कोर्ट करते हैं, कब हरिनाम पूरा करते हैं, कोई समझ नहीं पाता था। कितने बड़े विद्वान थे और अनुभवी, अनुभव के साथ में सब चीजों को करते थे। इसके बाद में अपने कार्यकाल में बहुत से जगहों में जहां गए उन्होंने टोली बनाई वैष्णवों की, युवकों की टोली, और उसको नाम रखा क्या, नामहट्ट। अपने नामहट्ट के झाड़ूदार में, हट्ट माने कहते हैं मेला, जहां पर सब्जी इत्यादि मंडी होती है ना, उसको कहते हैं हाट। हाट से हट हुआ है, बंगला में हाट कहते हैं, वो हाट से, हट से ये हाट। हाट माने मेला, बाजार, सीधा शब्दों में बाजार। बाजार माने कितनी तरह की चीजें लगी हुई हैं। कर्मों का बाजार है, ज्ञान का बाजार है, योग का बाजार है, सिद्धि का बाजार है, भक्ति में भी कितनी प्रकार की भक्तियां हैं इसके बाजार लगे हुए हैं, उसमें में दास सख्य बात्सल्य मधुर इत्यादि का बाजार, एक एक शॉप अलग अलग सब लगी है। एक व्यक्ति जाता है वो अपने पसंद की चीज वहां से ले आता है। यदि मार्गदर्शक ठीक है तो वो ठीक में सर्वोत्तम चीज को पाएगा, और नहीं तो नहीं पाएगा। इनका काम क्या था, गांव गांव में अच्छे अच्छे युवकों को चुन लिया, कुछ चुन करके कहते थे ये तुम एक टोली बना करके उस गांव में घूमना। और कैसे घूमना, एक आदमी मृदंग ले ले, ढोलक ले, नहीं मिले तो केवल करताल हाथ, नहीं मिले केवल ताली, और गांव में क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही कहो, भिक्षा देने के लिए तो वैसे यही भिक्षा दो, जो ये नाम करो, कोई चीज को दूसरा कोई चीज मांगना मत, बस नाम का प्रचार करना, ये नाम हट है, मैं उसका झाड़ूदार हूँ। झाड़ूदार माने कौन, जो मैल साफ कर सके, जो हृदय का मैल साफ कर सके वो झाड़ूदार है, ये स्वयं बने। यही गुरु का काम है, मैल को झाड़ देना, जीवों के हृदय में जो जितने प्रकार की विलासिता, भोग की कामना, वासना है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा है, भगवान के प्रति विमुखता है, ये सब धूल, पत्थर, कंकड़, कांटे, ये सब चीजें है, गंदी चीजें हैं, इन चीजों को झाड़ करके बाहर करके हृदय को निर्मल कर देता है, यही गुरु का काम है। भक्त विनोद ठाकुर जी ने जहां जहां रहे वहां वहां पर कीर्तन की टोली बना करके नगर नगर में प्रचार करना आरंभ किया ना। या पहला काम। दूसरा काम, नवदीप में जब वो उनकी उम्र हो गई तो उन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ करके, और नवदीप के एक वन में गोद्रुम कहलाता है, वहीं पर गंगा नदी बह रही है, पास में एक दूसरी नदी है, वहीं पर त्रिवेणी बनी हुई है, बड़ा सुंदर रमणीक दृश्य, उसी जगह में एक कुटी बना करके रहने लगे और वहीं पर भजन करने लगे। एक दिन रात में उन्होंने देखा पूरब की तरफ में कोई चीज बड़ी चमकीली ज्योति सी दिख रही है, हरिनाम करते हुए थोड़ी देर के बाद में देखा जो वो अदृश्य हो गई। दूसरे दिन फिर उस पर चढ़े, लोगों से पूछा जी भाई वहां कहां से कोई ज्योति दिखता है, अजी हमने तो कभी नहीं दिखा। दूसरे दिन इसका पता लगाने के लिए गए और शाम को फिर वहीं आकर के ऊपर दुतल्ले घर पर वहीं से बैठ करके उधर ही देखने लगे, हरिनाम करने लगे। इतने में देखा चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, शिवास पंडित, गदाधर और उनके जितने परिकर हैं बड़े मृदंग और करताल लेते हुए आनंद से कीर्तन करते हुए झूम रहे हैं। कोई गिर रहा है, कोई लोट रहा है, कोई हार आधे, कोई हार कृष्ण करके गिर रहा है, जमीन में लोट पोट रहा है, और हजारों की संख्या में उन लोगों को देखा। थोड़ी देर के बाद में ज्योति भी समाप्त हो गई, देखा जी वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे दिन फिर वहां पर गए अपने आप जिधर से वो लाइट आ रही थी, देखा क्या, रात में देखा एक ताल का वृक्ष है वहां, इसलिए दूसरे दिन उठ करके ताल वृक्ष को निशाना बना करके वहीं से चले। चलते चलते जब वहां पर ताल वृक्ष के निकट में गए तो उन्होंने देखा तुलसी का एक वन, और जगह सब खेती हो रही है, बड़ी उपजाऊ भूमि, और वहां पर तुलसी का वन है। अच्छा भाई कौन सा स्थान है, तो इसका नाम मियापुर है।
मियापुर, अच्छा।
तो ये तुलसी जी के यहाँ पर देखते हैं कि खेती और जगहों पर तो देखते हैं कि बहुत गेहूं चने ये सब हो रहे हैं, चावल हो रहे हैं, यहाँ पर तुलसी का वन लगा हुआ क्यों इतनी जमीन में? उन लोगों ने कहा, मुसलमानों ने, मुसलमान ही वहां पर आसपास में थे, उन्होंने कहा जी हम लोग यहाँ पर ये धान की खेती करना चाहते हैं, चना गेहूं कुछ होता नहीं है, फिर वही तुलसी हो जाती है, उसको फिर काट करके फेंक देते हैं, फिर वही पर हो जाती है, हम लोग तंग आ गए इसलिए इस स्थान को छोड़ दिया। हमने देखा जैसे ये स्थान तो साधारण नहीं है, यहीं पर कीर्तन रात में हो रहा था। अब वहां से लौट करके वृंदावन में आए, वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक थे, वृंदावन में राधा कुंड के पास में सूर्य कुंड एक है, यहाँ पर श्रीमती राधिका जी सूर्य पूजा करने के बहाने उनसे कृष्ण से मिलती थी और कृष्ण पुरोहित बन करके उनको सूर्य पूजा कराते थे। कैसे? कहते मित्राय स्वाहा। मित्राय मैंने क्या? मित्र सूर्य का एक नाम है मित्राय, और दूसरा है जो मित्र, जो कृष्ण हमारे जो सखा हैं, हमारे प्रियतम मित्र हैं, उनके लिए स्वाहा। इसलिए मित्र कृष्ण के लिए यहाँ पर कर दिया और उधर सूर्य के लिए भी, इसलिए वहाँ पर जो बातें होती थी तो सब कृष्ण की पूजा, कृष्ण से मिलना होता था, उनकी साथ भी वहाँ पर आ जाती, तरह तरह के वहाँ पर लीलाएं होती। वो कहता जरा हमारी बहू का जरा हाथ तो देख लो। कहते मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं हाथ पांच कुछ नहीं देखता, मैं बहुत दूर रहता हूँ इन चीजों से, तुम दूसरे ज्योति के पास ले जाओ। कहने हमारा तो तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं कोई ब्राह्मण का बालक जो इतना तेजस्वी और इतना ब्रह्मचर्य रहने वाला, स्त्रियों के तरफ में देखने वाला नहीं। इस तरह से वहां पर सूर्य कुंड में वो रहते थे, उनका नाम था जगन्नाथ दास महाराज, सिद्ध थे, वैष्णव सार्वभौम उनको कहा जाता था। उनकी उम्र 144 वर्ष की थी, आंखों की पलके ये जो है ना इसे ढक लेती थी, उसको जब देखना होता तो ऐसे उठा करके देखते थे ना? और चलते नहीं थे, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा, उनको टोकरी में रख करके उनके शिष्य जहां कहीं ले जाना होता जाते थे। जब कृष्ण का कीर्तन होता, मृदंग का, जबकि ताथे थे जब बजता एकदम 5-6 फुट ऊपर में उछल जाते और कीर्तन करते। इस तरह से कभी कभी बेहोश हो जाते, कभी कुछ कभी कुछ। और बड़े भारी विद्वान थे उसमें, ब्रजमंडल में, गौड़ मंडल में और जगन्नाथ का क्षेत्र मंडल में, सबके एक छत्र वैष्णव से माने हुए थे। उनके पास में गए, उन्होंने कहा जी भाई, उनसे कहा जैसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आजकल मायापुर मियापुर बन गया है, मुसलमानों ने वहां पर दखल करके उसको मियापुर कहते हैं, तो भी तुलसी बन को हटा नहीं सके, और मैंने रात में ये दिव्य चीजें सब देखी, इसलिए आप सिद्ध महात्मा हैं, आपको सभी मानते हैं, इसलिए आप चल करके वहां और उस स्थान को प्रकाश कीजिए। उस समय उनके कुछ शिष्य थे, भक्ति विनोद ठाकुर के पास में आए, बोले जी आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज थे, केसों का निपटारा करते थे, हमारा एक केस है। बोले तुम्हारा केस क्या? तो हमारा केस, हम अपने गुरु जी के साथ में हमारा केस है, केस यह है कि हम लोग हर संसार छोड़ करके आए हैं भजन करने के लिए, राधा कृष्ण की लीलाओं का हम स्मरण करेंगे और हरि नाम करेंगे दिन रात, और ये बाबा जी महाराज गुरु जी हमारे हैं, ये कहते हैं कि बैगन का पेड़ लगाओ, तुलसी का पेड़ पौधा लगाओ, फल फुलारी लगाओ, सब्जियां लगाओ और उसे कृष्ण का भोग होगा। कहने तुम लोग नाम करेगा, नाम नहीं होगा, बताइए तो हम लोग घर छोड़ करके ये खेती बाड़ी करने आए थे और इसमें लगा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा वो जो कहते हैं ठीक है, अभी तुम माला करेगा, हरे कृष्ण हमारा बेटा कैसा है घर पर, हरे कृष्ण हमारी स्त्री हमारे बिना बड़ी बड़ी दुखी होगी, हरे कृष्ण अब इधर में मन गया कहां, संसार के कामों में भोगों में आसक्त हो गया, इधर तुम्हारा मन स्थिर नहीं हो रहा, इसलिए तुम भजन नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा सुकृति करो जो प्रभु के लिए, कृष्ण के लिए तुम कुछ काम करो, सेवा, तुम यदि मन ही मन में चिंतन करेगा तो तुमको या तो वो संसार की बातें आएंगी या सो जाएगा। ये भजन भजन नहीं है। इसे ऐसे काम करो जिसमें तुम्हारी नींद न आए, आलस्य न हो और भगवान की कुछ सेवा सुकृति भी हो जाए। इसलिए पहले तुम ये काम करो तो इसके बाद में जब तुम आगे बढ़ जाएगा अनर्थ दूर हो जाएगा तुम लोगों ऐसा करना, भगवान का भजन करना। इस तरह से राय दी उनको। इसके बाद जगन्नाथ जी बाबा महाराज उनके साथ में उनका शिष्य उनके टोकरी में रख करके उनको ले आया। उस समय कलकत्ते के शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार के संपादक अंग्रेजी के, बड़े बड़े बंगाल के लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, रिसर्च स्कॉलर सर सब भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में कृष्ण की जन्मभूमि मायापुर में पहुंचे और वहीं पर कीर्तन हो रहा था। जगन्नाथ बाबा जी महाराज टोकरी से निकल करके और एकदम ऐसा लंफ दिया कीर्तन करते हुए, जय सचिनंदन गौर हरि की। उन्हीं की यह जन्मभूमि मायापुर है, इसको सब मियापुर कहते हैं, यही इनकी जन्मभूमि है। यहीं पर सचिव देवी के गर्भ से एक नीम के पेड़ के नीचे ये चैतन्य महापुरुष हुए और यहीं से विश्व में सर्वत्र उन्होंने कृष्ण नाम का प्रचार किया जो विश्व में सर्वत्र हो रहा है। कृष्ण नाम से बढ़कर के और कोई चीज नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे राम से मत करो, हरे कृष्ण से करो। इससे जो कुछ भी इच्छा होगी वह संपूर्ण रूप से निश्चित रूप में पूर्ण हो जाएगी। कलिकाल में मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा, सेवा, मंदिर ये सब संभव नहीं है। जो करते हैं वो ठीक नहीं। कुछ लोग यज्ञ करते हैं वो भी ठीक नहीं। अरे शुद्ध घी तो नहीं मिलता, यज्ञ कहाँ से करेगा? कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा निर्लोभी विद्वान जो ठीक उच्चारण के साथ में उसको कर सके। इस तरह से किसी का चित्त शुद्ध नहीं है, वो अर्चन क्या करेगा? अर्चन के लिए भी तो चीजें जरूरत होती है। कलिकाल में ये सब नहीं है। अभी मुसलमान आएंगे, हिंदू भी मुसलमान हो रहे हैं, ईसाई बौद्ध आज बन रहे हैं बड़े गर्व के साथ में। अभी हमारा कोई यहाँ